समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर, और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है जयंती, पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट नरेश मागो। नरेश, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुदिता, हेलो एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स, यू ट्यून इनटू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। बट फर्स्ट हाफ कमिंग योर वे इज द न्यूज हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold an NDA rally in Palnadu, Andhra Pradesh this evening.
Videsh Mantri Subramaniam Jaishankar ne kaha, vinirman kshetra ko mazboot karke hi Cheen ka mukabla kiya ja sakta hai.
Enforcement Directorate summons Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in an alleged money laundering case in Delhi Jal Board.
भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया, 16 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा।
And in Women's Premier League cricket, Delhi Capitals to take on Royal Challengers Bangalore in the Summit Clash this evening. Murita, time now for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, what are we going to talk about?
मुझे लगता है इस वक्त का जो सबसे जरूरी हम सब के लिए विषय हो गया है वो मौसम है, क्योंकि जिस तरह से पल पल बदल रहा है, कभी एकदम तेज गर्मी, कभी थोड़ा सा ठंड का मौसम हो जा रहा है, कभी आप पंखे चला रहे हैं, कभी बंद करके आपको रजाई ओढ़नी पड़ रही
है। Frequently,
बिल्कुल,
and it's become so inconsistent that it's leading to a lot of health issues as well.
बिल्कुल, ये बदलता मौसम हमें स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियों का सामना इसमें करना पड़ता है। बदलते मौसम में बच्चों और बूढ़ों के स्वास्थ्य पर जल्दी प्रभाव पड़ता है, और ऐसे में चिकित्सक भी उनके स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की हिदायत दे रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह और शाम के समय ठंड का सिलसिला बरकरार है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार झारखंड, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के राज्यों में 20 मार्च तक गरज के साथ बारिश हो सकती है।
That's right. They've actually forecast that scattered to moderate rainfall with thunderstorms, lightning and gusty winds are expected over Gangetic West Bengal during the next 4 days. It also said there is a possibility of hailstorms and squalls today in the region. It said scattered to moderate rainfall with thunderstorms, lightning and gusty winds are also expected in Jharkhand, Odisha, Vidarbh, Chhattisgarh and eastern Madhya Pradesh from today till the 20th of March. In fact, hailstorms are also likely over these regions that we just mentioned. And heavy rainfall is expected in Odisha and Chhattisgarh on Tuesday. And light rainfall and snowfall are likely over South Himalayan, West Bengal and Sikkim tomorrow and also on Tuesday.
आईएमडी ने कई राज्यों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल में 17 से 20 मार्च के बीच ओलावृष्टि और तूफान की संभावना है। इसके अलावा झारखंड, ओडिशा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ है, लेकिन आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में बादल छाए रह सकते हैं। आज भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रह सकता है। वहीं उत्तराखंड में सुबह और शाम के समय ठंड होने के बावजूद दिन में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही अगले 4 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है।
The Met Department has said that there is a possibility of sporadic hailstorm in Madhya Pradesh between March 17 and 20, and Vidarbha during March 16 and 19. Also during March 17 and 19, there is a possibility of heavy rainfall at isolated places in East Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The Met Department has predicted light rain or snow in sub-Himalayan West Bengal and Sikkim between March 16, 18 and 19.
आज तेज धूप, कल बादल और उसके साथ ही बारिश। मौसम का ये पल-पल बदलाव किसी को भी बीमार कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप भी इस दौरान होने वाली परेशानियों और उनके समाधान के बारे में जानें। मौसम, पर्यावरण और जीवन शैली में बदलाव के कारण ऋतुओं का परिवर्तन स्वास्थ्य के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। मौसम बहुत ही अप्रत्याशित है। एक दिन इतनी तेज धूप है कि आपको पसीना आ रहा है, अगले दिन ठंड है और दूसरे दिन बारिश हो रही है। मौसम के बदलते मिजाज के कारण मौसम पूर्वानुमान पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। अच्छी इम्यूनिटी के बावजूद समय समय पर मौसम आपको परेशान कर सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप मौसम में बदलाव के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं और उनके समाधान के बारे में सब कुछ जानें। आइए जानते हैं कि किन चुनौतियों से आपको रूबरू होना पड़ सकता है।
And you know what you're saying actually makes so much sense considering that in this season itself there's a lot of pollen going around and allergies happen. You know, seasonal allergies can occur during the change of seasons and from winter to spring or summer allergies can crop up and this may be, like I said, due to increase in pollen or other allergens in the air. Also, there are chances of respiratory infection with change in weather, flu, cold and pneumonia may start happening more frequently and this happens due to changes in temperature as well as humidity levels. What we also lose sight of is water consumption. So if we don't have enough water because we don't think it's hot enough, then we run the risk of getting dehydrated and I think that's a very uncomfortable situation for a person because you know you sweat excessively but you do not replenish that with water so it can cause fatigue, headache and dizziness as well.
जी तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मौसम के बदलाव के दौरान अपने शरीर में होने वाले किसी भी बदलाव पर ध्यान दें, जैसे कि अगर भूख में कोई बदलाव नजर आता है, नींद के पैटर्न में या फिर ऊर्जा के स्तर में कोई बदलाव अगर आपको नजर आता है तो ये आपको किसी भी संभावित स्वास्थ्य समस्या की शुरुआत में ही पहचान करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा मौसम का बदलना कई बार आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, प्रोटीन से भरपूर पोषक आहार लें और समुचित नींद और आराम पर भी ध्यान दें। मुझे लगता है नरेश एक ये ऐसी चीज है जिस पर कई बार लोग ध्यान देना छोड़ देते हैं, खासकर हमारा आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें नींद और आराम को कई बार लोग थोड़ा सा निग्लेक्ट कर जाते हैं।
The life has become so hectic, the pace is so fast, we lose sight of the fact that our body needs rest as well.
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा जैसे ही मौसम गर्म होता है खूब पानी, नारियल पानी, नींबू पानी या हर्बल चाय पिएं। मीठे पेय और शराब से बचें जो आपके शरीर में पानी की कमी पैदा कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन से थकान, चक्कर आना और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा गर्मी के मौसम के दौरान हल्के, ताजे और ठंडे खाद्य पदार्थों को अपने आहार में समायोजित करना एक अच्छा विचार है। ऐसे फल और सब्जियां शामिल करें जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। मुझे लगता है नरेश शायद गर्मी बढ़ने पे आपको तरबूज, खीरा, संतरा, अंगूर ऐसे ही फल ज्यादा अच्छे भी लगने लगते हैं।
दे एक्चुअली आर वेरी रिफ्रेशिंग
फॉर द बॉडी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा हाइड्रेट करते हैं और साथ ही आवश्यक पोषक तत्व और विटामिन भी देते हैं शरीर को।
वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू डू और फेवरेट थिंग्स टू ईट ड्यूरिंग सच वेदर इज पुदीना रायता। Mint is very cooling and curd and yogurt, they are also very hydrating. So the combination is very good.
जी बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसा नरेश ने बताया दही और पुदीना जैसे ठंडे खाद्य पदार्थ आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करेंगे। इसके अलावा भारी और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए क्योंकि ये शरीर की गर्मी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये पाचन संबंधी समस्याओं को भी जन्म दे सकते हैं।
जी
साथ ही मछली, टोफू, पनीर, चिकन जैसे हल्के प्रोटीन भी शामिल करें और लाल मांस जो कि भारी माना जाता है काफी, उसका सेवन कम कर देना चाहिए।
इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट।
बिल्कुल बिल्कुल। एक और बहुत जरूरी चीज है कि गर्मी के महीनों में अपनी त्वचा को आपको सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह से ढक रहे हों, टोपी और चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं और सनस्क्रीन का भी आप साथ में। जी जी। इसके अलावा अगले कुछ महीनों में लू लगने का खतरा बढ़ जाएगा, तो दिन के सबसे गर्म समय में बाहर की गतिविधियों से बचें और वातानुकूलित स्थानों में रहें। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जाने का और उनसे जानने का कि क्या कुछ खास है उनके पास।
So Melissa, in a move aimed at supporting working mothers, Haryana police has opened creches, that's child care centers within the police lines across 24 districts, and soon more districts will get the same facility. This is going to really help them a lot. We have a report from our Chandigarh correspondent Akanksha.
This decision comes after gathering feedback from female officers stationed in various districts, underlining the importance for ensuring the well-being of their children. This initiative is a joint effort between the Women and Child Development Department and the Haryana Police, with child care centers already established in 24 districts, and efforts are underway in opening 10 other creches in other districts. Creche facility offers modern amenities for children. Trained helpers and workers are deployed to ensure the children receive proper care, along with comprehensive food arrangements to meet their nutritional needs. Additionally, various sports equipment had been installed to promote healthy play and development. Notably, CCTV surveillance is in place to monitor the children, providing parents with remote access to observe their activities while on duty. Moreover, counselors and psychologists are appointed by the Haryana Police to support the children's mental and physical well-being. Constable Sunanda, who sent her two-year-old son Yuvan Chil to creche, expressed her gratitude to the Haryana Police, stating that the opening of creche in the police line has brought her immense relief, allowing her to perform her duties without worries. She emphasized that the environment at the creches is safe and provides excellent facilities for the children. Constable Navdeep shared similar feedback, stating that she sends her 2.5-year-old daughter to creche, where she receives excellent care from the caretakers, bringing her great happiness. Akanksha Saxena for Parikrama from Chandigarh.
और नरेश, लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम घोषित होते ही बाकी राज्यों की तरह ही बिहार में भी चुनावी गतिविधियों में तेजी आ गई है। राज्य में 7 चरणों में मतदान होंगे। इस बार 7,67,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। पहले चरण में गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई जैसे नक्सल हिंसा प्रभावित संसदीय क्षेत्रों में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसकी अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रदेश में मतदान के लिए 77,000 से अधिक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां मतदाताओं को मूलभूत सुविधाओं जैसे पीने के पानी, बैठने की जगह, छाया, शौचालय जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इधर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर, दीवारों पर से राजनीतिक दलों के प्रचार और नारों को हटाने का अभियान शुरू हो गया है। राज्य में पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। निर्वाचन आयोग की ओर से ऐसे वोटरों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। पहली बार वोटर बने युवाओं की संख्या 1,00,000 से अधिक है। उन्हें मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व को समावेशी बनाने के लिए चुनाव आयोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
Time now for defense news capsule from the Director of Public Relations, Ministry of Defense. The report has been filed by Broadcasting Officer Anand Saurabh.
हम आपको रूबरू कराते हैं इन जाबाज नारियों से जिन्हें रक्षा क्षेत्र में तमाम बाधाओं को पार कर अपना मुकाम हासिल किया है। इस कड़ी में हमने भारतीय सेना में अधिकारी मेजर सौम्या शुक्ला से बातचीत की। आइए सुनते हैं इस बातचीत के प्रमुख अंश। सबसे पहले हमें अपने बारे में बताइए।
जय हिंद एवरीवन, आई एम मेजर सौम्या शुक्ला, आई एम पोस्टेड इन सप्लाई डिपोर्ट दिल्ली कैंट प्रेजेंटली। आई वॉज कमीशन ऑन 11 सितंबर 2011 फ्रॉम ओडीए चेन्नई। आई बिलोंग टू लखनऊ एंड ओरिजिनली आई एम फ्रॉम सिद्धार्थनगर, इज अ वेरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट नियर गोरखपुर।
आपको सेना में आने की प्रेरणा कैसे मिली?
एज अ किड मेरे ग्रैंडफादर मुझे एक स्टोरी सुनाते थे, स्टोरी नहीं बोलेंगे, इट वॉज अ पोयम बेसिकली। मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो वहाँ से वो इंटरेस्ट जागा। फिर मैं जब तक मैं स्कूल में आई मैंने एनसीसी ज्वाइन करी, कॉलेज में भी मैंने एयर विंग एनसीसी ज्वाइन की आईयूपीएस स्क्वाडन से, वहां से मुझे गाइडेंस मिली। फिर मैंने एसएसबी के लिए अपीयर किया, आई क्लियर्ड माय एसएसबी और मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली।
ट्रेनिंग के दौरान महिला होना कितना चैलेंजिंग था?
ऑनेस्टली बताऊं, एकेडमी में महिला या पुरुष जैसी कोई चीज नहीं होती है, सेम ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सेम चीजें हैं जो कि एक मेल से एक्सपेक्ट की जाती हैं वो हमसे भी की जाती हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि महिला के तौर पे मुझे एकेडमी में कुछ अलग कराया गया या मेरे कोई अलग अनुभव थे। हाँ ये है कि एज अ लेडी हमारे कुछ इंटरनल जो अपने फिजिकल इश्यूज होते हैं, बट वो भी एकेडमी में इंश्योर किया जाता है कि आप वो भी ओवरकम कर जाए। एंड जब तक आप एकेडमी से बाहर निकलते हैं आप सिर्फ एक ऑफिसर होते हैं, आप कोई महिला या पुरुष नहीं होते।
पिछले 12 वर्ष आपने भारतीय सेना में बिताए हैं, एक महिला के तौर पर क्या अनुभव रहा आपका?
जैसे कि एकेडमी में था, सिंथ एकेडमी में भी आपको तैयार करती है एक ऑफिसर बनने के लिए, वहाँ भी कोई महिला या पुरुष का भेदभाव नहीं होता है। एकेडमी से बाहर निकल के थे जब हम आर्मी में आए, हमें वही माहौल मिला जिसके लिए हमें एकेडमी में तैयार किया गया था। यहाँ भी कोई भेदभाव नहीं किया गया, वो सारे काम जो कि एक मेल ऑफिसर ने किए या जो उनसे एक्सपेक्ट किए गए वो सारी चीजें हमने भी की और हमसे भी वही उम्मीदें, उसी तरह का मोटिवेशन हमारे अंदर भी था जो मेल ऑफिसर्स में था। तो मैं बहुत दावे के साथ इस चीज को बोल सकती हूँ कि इसमें कोई महिला या पुरुष होना मैटर नहीं करता आर्मी में, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं।
पिछले 12 वर्षों का ऐसा कोई यादगार पल, गौरव का पल जो आप साझा करना चाहेंगी?
वैसे तो यूनिफॉर्म पहनना अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है, लेकिन उसके अलावा भी पिछले 12 सालों में जो कई ऐसे मौके आए हैं जो मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति हुई है कि अभी 26 जनवरी को सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस के सामने, क्योंकि खुद भी एक महिला है, मुझे झंडारोहण करने का गौरव प्राप्त हुआ। वो अनुभूति मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकी हूँ, वो एक अलग ही गूज़बम्स मूवमेंट था मेरे लिए। उसके अलावा 29 जनवरी को अगेन मुझे वो मौका मिला जबकि मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने, भारत की प्रथम नागरिक के सामने झंडा रोहण किया। ये मोमेंट मैं अपनी जिंदगी में याद रखूंगी। इसके अलावा चूंकि मैं एक पर्वतारोही भी हूँ तो मुझे समय समय पर ये मौके मिलते रहे हैं, जबकि मैंने 15 अगस्त को झंडा फहराया है अलग अलग माउंटेन पीक्स पे, वो मोमेंट भी मेरे लिए यादगार है और पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा।
और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आकाशवाणी पर आपको सुन रही महिलाओं और खासकर देश की तमाम यंग एस्पायरिंग गर्ल्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
जो भी एस्पायरिंग वुमेन इस समय ये सुन पा रही हैं, मैं उन्हें सिर्फ ये बताना चाहूंगी, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर ड्रीम्स। समाज को आपके लिए लिमिट डिसाइड करने का मौका मत दें, अपनी जिंदगी अपनी डेस्टिनी आप खुद कार्य करें, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। स्काई इज द लिमिट फॉर यू।
परिक्रमा के लिए जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय से मैं आनंद सौदा।
Let's now take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
In today's episode, we remember
social activist and freedom fighter Jagdev Rao Patil, who died on the 17th of March 1939. A resident of District Buldhana, Maharashtra, Patil took part in the civil disobedience movement of 1930. He was arrested and sentenced to 6 months rigorous imprisonment. After coming out of jail, he edited the newspaper Rashtramata. He was elected the president of Malakapur Taluka Congress Committee and continued working for the freedom movement. It is believed that he was killed under mysterious circumstances by a police agent on 17th of March 1939. We salute the great martyr.
We also remember martyr Mirza Bahadur, a resident of Delhi, who participated in the First War of Indian Independence in 1857. He took active part in fighting against advancing British army in Delhi, but was captured by British troops after reoccupation of Delhi. Accused of rebellion against British rule, Mirza was sentenced to death and executed by hanging on the 17th of March, 1858.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar.
और अब आपको ले चलते हैं खेल के मैदान की ओर और जानते हैं वहां की हलचल।
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विल टेक ऑन दिल्ली कैपिटल्स इन द समिट क्लैश ऑफ विमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट एंड दिस मैच विल बी हेल्ड एट अरुण जेटली स्टेडियम इन न्यू दिल्ली दिस इवनिंग। द मैच विल स्टार्ट एट 7:30 PM। द स्मृति मंधाना लेड आरसीबी डिफीटेड डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस बाय 5 runs इन द सेमीफाइनल ऑन फ्राइडे, while table toppers Meg Lanning led Delhi Capitals entered the final directly as they won 6 of the 8 games in the tournament as against Royal Challengers who won only 4 games.
भारत के गुलवीर सिंह ने कल कैलिफोर्निया में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ का रजत पदक जीता। उन्होंने ये दौड़ 27 मिनट और 41.81 सेकंड में पूरी की। गुलवीर ने 20 सेकंड कम लेते हुए 16 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि 41 सेकंड अधिक लेने के कारण वे पेरिस ओलंपिक में जगह बनाने में चूक गए। पेरिस ओलंपिक में प्रवेश के लिए यह दौड़ 27 मिनट में पूरी की जानी थी।
6-time Miami Open champion Novak Djokovic confirmed to pull out of the upcoming tennis tournament yesterday. The top-ranked 36-year-old Serbian star apologized to his Miami fans on a social media platform, citing the balance between his private and professional schedule at this stage of his career. The main draw of the Miami Open is set to begin from Tuesday and the final will be played on the 30th of March. In some more news, a massive forest fire in China is threatening the habitats of giant pandas and other rare species in the inland province of Sichuan. State-run China Central Television has reported that a fire broke out on Friday in a forest in Yajiang in the Gansu Tibetan Autonomous Prefecture, and strong winds helped the blaze spread to other areas. Local authorities in Yajiang say the affected areas are at an altitude of over 2,000 meters and are home to such rare species as the golden takin, an animal in the bovine family.
और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है, जयंती या फिर जन्मदिवस। आज भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती है। 1962 में हरियाणा के करनाल में उनका जन्म हुआ। चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं और वहीं 1988 में उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया। 1994 में उनका चयन बतौर अंतरिक्ष यात्री किया गया। अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान उन्होंने कोलंबिया स्पेस शटल से 1997 में सफलतापूर्वक संपन्न की। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला ने कोलंबिया स्पेस शटल से ही अपनी दूसरी उड़ान शुरू की थी। 16 दिन के मिशन में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ लगभग 80 परीक्षण और प्रयोग किए, लेकिन वापसी के समय 1 फरवरी 2003 को शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कल्पना चावला समेत 6 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई।
Today we are also remembering Puneet Rajkumar, colloquially known as Appu. He was an Indian actor, philanthropist, playback singer, television presenter and producer who worked in Kannada cinema. He was one of the most popular actors in Kannada cinema. He appeared as a lead in 32 films. As a child, he appeared in many films. His performances as a child actor in Basanta Geeta, Bhagyavanta and Chalisuva Modagalu, they won laurels for him. They were praised humongously. He won the National Film Award for Best Child Artist for his role of Ramu in Betarahuvu. He also won Karnataka State Award for Best Child Artist for a couple of movies as well. His first lead role was in 2002's movie Appu, and in a career spanning 3 decades, he won 1 National Film Award, 4 Karnataka State Film Awards, 6 Filmfare Awards South, and 5 SIIMA Awards.
आज लावणी क्वीन के नाम से मशहूर लोक गायिका सुलोचना चव्हाण की जयंती है। उन्हें यह उपाधि मराठी साहित्यकार प्रहलाद केशव अत्रे द्वारा प्रदान की गई थी। लगभग 6 दशक के गायन करियर में सुलोचना जी ने थिएटर और एल्बमों के साथ ही मराठी और हिंदी फिल्मों के लिए भी गीत गाए। उन्होंने गुजराती थिएटर के साथ ही कुछ हिंदी उर्दू नाटकों में भी काम किया, साथ ही कुछ पंजाबी और तमिल फिल्मों में भी अभिनय किया, लेकिन उनकी असल पहचान बनी उनके भावपूर्ण लावणी लोकगीतों से। लावणी महाराष्ट्र की लोक नाट्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग है। संगीत, कविता, नृत्य और नाट्य सभी मिलकर लावणी बनाते हैं। इनका सम्मिश्रण इतना बारीक होता है कि इनको अलग कर पाना लगभग असंभव होता है। लावणी शैली को जीवित रखने और उसे लोकप्रिय बनाने का बहुत बड़ा श्रेय सुलोचना जी को जाता है। उन्हें 2012 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और नरेश, बहुत ही भावपूर्ण दृश्य था वो, जब व्हीलचेयर पर बैठी सुलोचना ताई को सम्मानित करने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद खुद चलकर उनके पास गए थे।
We are also remembering Nat King Cole, who was born on this day in 1919. Known professionally by his name, Nat King Cole, or actually his name was Nathaniel Adams Cole. He is an American singer, jazz pianist and actor. Cole's career as a jazz and pop vocalist started in the late 1930s and spanned almost three decades, where he found success and recorded over 100 songs that became hits on the pop charts. Cole started his career as a jazz pianist, where he formed the King Cole Trio, which became the top-selling group. Let's listen to one of his favorite songs.
The falling leaves drift by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands
आज मशहूर भारतीय महिला शटलर साइना नेहवाल का जन्मदिन है। वो ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2012 में लंदन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। 1990 में आज ही के दिन जन्मी साइना नेहवाल ने अपने परिवार के हरियाणा से हैदराबाद चले जाने के बाद 8 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। उनकी मां भी राज्य स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी थी। 2008 में वे विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। 2009 में इंडोनेशियाई ओपन जीतने वाली वे पहली महिला खिलाड़ी बनी और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 5 पदक उन्होंने जीते और 2010 में ही वे विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी और 2015 में वो नंबर 1 खिलाड़ी बनी। 2010 में पद्मश्री और 2016 में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया।
Saying happy birthday to Neil Dutt, a music composer and singer from Kolkata, West Bengal. Neil received the National Award Rajat Kamal from the Government of India for Best Music Direction in 2012 for the soundtrack of the Bengali film Ranjana Ami Aar Ashbo Na, which means Ranjana, I Ain't Coming Back No More. Dutt is the third Bengali to win the National Award for Best Music Direction from Bengal. He is arguably the first music director in India to rearrange a Rabindranath Tagore composition with modern electronic music. Let's listen to this beautiful number by him.
হয়তো সূর্যের রং হয়ে যাবে ঘোলাটে, হয়তো গলে যাবে হিমালয়, তবু আসবো আমি তোমার পাড়ায়, ফিরে আসবো আমি তোমার পাড়ায়, তুমি থেকো দাঁড়িয়ে তোমার বারান্দায়, আমি আসবো ফিরে আসবো।
और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो अब मुदिता और नरेश मागू को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट पर। नमस्कार। Thank you.